नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को सशक्त बनाने के लिए मेट्रो विस्तार के बजट को 2,900 करोड़ रुपए से अधिक किया। दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और ग्रैप 4 के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने 31 जनवरी तक लंबित बिलों पर लगने वाले शुल्क को माफ किया और लोक निर्माण विभाग पश्चिमी दिल्ली के डार्क स्पॉट्स को रोशन करने का अभियान चला रहा है। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार राजधानी में स्वच्छ, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को तेजी से सशक्त बना रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि मेट्रो विस्तार के लिए पिछले 500 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 2,900 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन का कुल बजट 5,700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9,110 करोड़ रुपए हो गया है। इससे मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, नई इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती, बेहतर मार्गों और मजबूत अंतिम छोर तक संपर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने लंबित बकाया राशि के निपटान पर भी बल दिया है। इसके अंतर्गत अब तक 940 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 36 करोड़ रुपए का भुगतान प्रक्रिया में है और लगभग 2700 करोड़ रुपए के पुराने बकाए निपटाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन प्रयासों से प्रदूषण में कमी आएगी, आवागमन तेज होगा और राजधानी में सतत शहरी परिवहन को मजबूती मिलेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अटल कैंटीनों के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड DUSIB के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि इन कैंटीनों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया जा रहा है। वहीं समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अटल कैंटीन में मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया जा रहा है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज रमेश नगर विधानसभा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि नागरिकों को सुदृढ़ आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण और सुव्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली वासियों के लिए 31 जनवरी तक लंबित बिलों पर लगने वाले 100% विलंब शुल्क माफ कर दिया है। जल बोर्ड के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त जुर्माना नहीं लिया जाएगा। वहीं बोर्ड ने ऑफलाइन भुगतान के लिए उपभोक्ता को नजदीकी जोनल कार्यालय में जाकर नकद कार्ड या UPI के माध्यम से भुगतान करने को कहा है। वहीं ऑनलाइन भुगतान के लिए जल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध है। दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित करें। इस बीच दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि आज से शुक्रवार तक चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के अंतर्गत विभिन्न जलाशयों की वार्षिक सफाई का कार्य किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
जलाशयों की वार्षिक सफाई के कारण राजधानी के कई इलाकों में जल आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार हसनपुर जलाशय से जुड़े विनय मार्ग, अकबर रोड, सरोजनी नगर, चाणक्यपुरी, दूतावास क्षेत्र, सफदरजंग और मौलाना आजाद रोड सहित आसपास के क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। बोर्ड ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति की जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड ने शहरवासियों से किसी भी आपात स्थिति के लिए बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने की सलाह दी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत कर महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज नई दिल्ली में भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वर्ष 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में उपराष्ट्रपति ने सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, सतर्कता और उत्तरदायित्व के उच्चतम मानक बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि युवा अधिकारियों की युवा ऊर्जा और आधुनिक सोच राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से सेवा भाव और कर्तव्य बोध को अपना मार्गदर्शक मंत्र बनाने का आह्वान किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशिष्ट वैज्ञानिक और महानिदेशक डॉ चंद्रिका कौशिक और RRU के कुलपति प्रोफेसर बिमल एन पटेल ने हस्ताक्षर किए। समझौते के अंतर्गत दोनों संगठन संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, PhD और फेलोशिप कार्यक्रमों तथा सुरक्षा बलों के लिए विशेष प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के विरुद्ध कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाएगी। इसी क्रम में सरकार ने वैध प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र PUC चालान को माफ न करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि इसके लिए सरकार को अदालत भी जाना पड़े तब भी वो पीछे नहीं हटेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बहुस्तरीय रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। एक प्रेसवार्ता के दौरान श्री सिरसा ने कहा कि आज से राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट।
राजधानी में ग्रैब 4 के तहत नो PUC नो फ्यूल नियम लागू होने के बाद अब तक 2 लाख से ज्यादा वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC दे दिए गए। वही करीब 10,000 वाहन तय मानकों पर खड़े नहीं उतर सके, जिसे लेकर श्री सिरसा ने कहा कि सख्त प्रवर्तन सही दिशा में असर दिखा रहा है। वहीं दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति अवैध तथा अनधिकृत उद्योगों की पहचान कर रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई होगी।
DPCC के साथ जो अनऑथराइज्ड इंडस्ट्री है उसका भी सीलिंग का प्रोसेस MCD की तरफ से शुरू किया गया। जो लीगल इंडस्ट्री है इसको 100% किसी भी कैटेगरी में हो, पोल्यूटिंग हो या नॉन पोल्यूटिंग हो, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनको तुरंत बंद किया जाए, इसलिए MCD इनके ऊपर भी कार्रवाई कर रही है।
निजी दफ्तरों द्वारा 50% वर्क फ्रॉम होम निर्देशों का पालन न करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। श्री सिरसा ने कहा कि धूल नियंत्रण के लिए सड़कों पर 24 घंटे सफाई और पानी का छिड़काव जारी है। लैंडफिल स्थलों पर प्रतिदिन लगभग 35,000 मीट्रिक टन कचरे की बायो माइनिंग की जा रही है। साथ ही शहर के पुराने जलाशयों को पुनर्जीवित करने को कहा गया है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह और आयुक्त अश्विनी कुमार से संपत्ति कर निपटान योजना प्रॉपर्टी टैक्स सुनियो एमनेस्टी स्कीम 2025 की अवधि बढ़ाकर 28 फरवरी तक करने का अनुरोध किया है। श्री कपूर ने कहा कि जानकारी की कमी के कारण अभी भी कई संपत्ति करदाता इस योजना का लाभ नहीं ले सके हैं, इसलिए जनहित और निगम के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना की अवधि को बढ़ाने की मांग की गई है। परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि दिल्ली में अगले वर्ष से नई EV नीति लागू होने जा रही है, जो राजधानी को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य प्रदान करेगा। इस अभियान के तहत राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन पहले से कहीं ज्यादा सस्ते और सुलभ होंगे तथा पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर आकर्षक बोनस और अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके अलावा नई नीति के तहत EV के लिए कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे तथा बैटरी स्वैपिंग जैसी आधुनिक व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED की याचिका पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य लोगों से जवाब मांगा है। ईडी ने निचली अदालत के उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई अगले वर्ष 12 मार्च को तय की है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नकली दवाइयों और फर्जी कॉस्मेटिक्स के उत्पादों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया है कि इस अपराध में लिप्त दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान दो मशीन बरामद की गई, जिसका इस्तेमाल फर्जी कॉस्मेटिक्स के रैपर छापने में किया जा रहा था। पुलिस ने बताया है कि आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली पर्वतमाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के माध्यम से पर्वतमाला के संरक्षण के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को मान्यता देता है और समर्थन करता है। आज नई दिल्ली में श्री यादव ने कहा कि किसी भी नए खनन पट्टे को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित विशेष रूप से संरक्षित और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाएगी।
अरावली का 58% एग्रीकल्चर एरिया है। अरावली में लगभग 11% वुडेड एरिया है। अरावली में 6-7% रेजिडेंशियल एरिया, सिटीज इसी में बसे हुए हैं। 2% वाटर एरिया है, पर 20% जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जैसे मैंने कहा 4 टाइगर रिजर्व है, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया प्लांटेशन है, वहां तो बिल्कुल भी माइनिंग अलाउ नहीं है।
लोक निर्माण विभाग पश्चिमी दिल्ली के डार्क स्पॉट्स को रोशन करने का अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत नई दिल्ली और आधुनिक एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, साथ ही खराब पोल तथा लाइटों की मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा रिंग रोड के राजा गार्डन से पंजाबी बाग तक के इलाके में सड़क की प्रकाश व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कीर्तिनगर, मायापुरी, मोतीनगर जैसे पश्चिमी दिल्ली के कई इलाके भी शामिल हैं। इन कार्यों से रात के समय बेहतर दृश्यता, दुर्घटनाओं की संभावना में कमी, धुंध या कम रोशनी में सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज घने कोहरे के कारण कई उड़ानें और रेलगाड़ियां बाधित रहीं। दिल्ली हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण लगभग 10 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं रेलवे के दिल्ली मंडल ने बताया कि आज दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि लगभग 17 ट्रेनें 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही हैं। राजधानी में आज सुबह के समय सामान्य से अधिक ठंड महसूस की गई, वहीं दिन में धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह कोहरा छाया रहने की उम्मीद है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 380 दर्ज किया गया, जो वायु की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। ये दिवस भारत की सबसे प्रभावशाली और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर दिल्ली समेत देश भर के शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान निकायों और अकादमिक मंचों पर वैज्ञानिक प्रगति और रोजमर्रा के जीवन में गणित के महत्व को उजागर किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को सशक्त बनाने के लिए मेट्रो विस्तार के बजट को 2,900 करोड़ रूपये से अधिक किया। दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और ग्रैब 4 के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने 31 जनवरी तक लंबित बिलों पर लगने वाले शुल्क को माफ किया। और लोक निर्माण विभाग पश्चिमी दिल्ली के डार्क स्पॉट्स को रोशन करने का अभियान चला रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।